पृष्ठ संख्या 123। 1924 से 1936 तक यूरोप। यूरोप पर महामंदी का प्रभाव। 1924 से लेकर महामंदी आरंभ होने से पहले तक का काल सामान्यतः आर्थिक समुत्थान एवं विकास का काल था। यद्यपि मौजूदा व्यवस्था को क्रांति द्वारा समाप्त कर देने का भय मिट चुका था, तथापि बहुत से देशों की सरकारें और साथ ही समाजवाद के विरोधी लोग क्रांति के भय का भूत दिखाते रहे ताकि वे अपनी रूढ़िवादी नीतियों का निर्बाध अनुसरण करते रह सके। कुछ देशों में बड़े बड़े उद्योगपतियों के समर्थन और सरकार तथा सेना की मिलीभगत से फांसीवादी आंदोलनों ने सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना भी खुल्लम खुल्ला हिमायत से की। 1920 के दशक के मध्य से आर्थिक समुत्थान का जो दौर आरंभ हुआ था वह 1929 में समाप्त हो गया। 1929 से 30 की कालावधि को दुःस्वप्न की शुरुआत कहा गया है। यह दुःस्वप्न 1933 तक जारी रहा, जिसके बाद फिर से इसके समुत्थान का काल आरंभ हुआ। यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं पर उपस्थित होने वाला संकट 1929 में संयुक्त राज्य में आई महामंदी का सीधा परिणाम था। अमेरिका ने यूरोप को कर्ज देना बिल्कुल बंद कर दिया और लगातार कर्ज मिलते रहने से जिन देशों की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था उन पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, जैसे कि जर्मनी पर। अमेरिका की ही तरह यूरोप में भी उद्योग धंधे बंद होने लगे और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। 1932 में जर्मनी में 60 लाख लोग बेरोजगार थे और लगभग आधी आबादी विपन्न थी। ब्रिटेन में बेरोजगारों की संख्या 30 लाख थी। जो यूरोपीय देश बुनियादी तौर पर कृषि प्रधान रह गए थे उन पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उनका सारा दरोमदार उनके कृषि उत्पादों के निर्यात पर निर्भर था। कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट से उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। हर देश ने अपने यहाँ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए, जिसके गंभीर परिणाम हुए। यूरोप के आर्थिक संकट के राजनीतिक परिणाम लोकतंत्र के लिए विनाशकारी साबित हुए। इस काल के समाप्त होते होते यूरोप के अधिकांश देशों में सर्वसत्तावादी, अर्धफांसीवादी तथा फांसीवादी शासन कायम हो चुके थे और जिन देशों में लोकतंत्र बचा भी रहा उनमें भी फांसीवादी शक्तियों का जोर बढ़ा। जर्मनी में आधुनिक काल का सबसे वारवर्तापूर्ण शासन स्थापित हुआ। इस काल के समाप्त होते होते यूरोप तथा बाकी की दुनिया से भी युद्ध की ओर खिसकती जा रही थी। ब्रिटेन का घटना चक्र। अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने के वादे के बल पर 1924 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की प्रथम सरकार बनी। वह कुछ भी करके दिखा नहीं पाई और 10 महीने में ही समाप्त हो गई। भय फैलाने के लिए लिखे गए एक जाली पत्र ने इस सरकार के पतन में कुछ योगदान किया। यह पत्र जिनोवीव के नाम से लिखा गया था, जो उन दिनों कोमिंटर्न का अध्यक्ष था। उसमें ब्रिटेन के साम्यवादियों को वहां विद्रोह कराने और ब्रिटिश थल सेना तथा नौसेना में अंदर से तोड़फोड़ कराने की हिदायत दी गई थी। कंजर्वेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी पर साम्यवादियों का हमदर्द होने का आरोप लगाकर उस पर प्रहार किए और अक्टूबर में उसने सत्ता प्राप्त कर ली। उसकी सरकार 1929 तक कायम रही। इसी दौर में ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल हुई, जो कि नाकामयाब रही। मई 1926 में मजदूरी में कटौती और काम के घंटों में बढ़ोतरी की आशंका के खिलाफ ब्रिटेन के कोयला खान मजदूरों ने हड़ताल कर दी। ब्रिटिश सरकार ने पूरे तौर पर कोयला खान मालिकों का पक्ष लिया। 4 मई 1926 को 30 लाख श्रमिकों ने कोयला खनिकों के प्रति सहानुभूति में हड़ताल की। हड़तालियों में रेल कर्मी, परिवहन मजदूर, इस्पात उद्योग श्रमिक तथा कुछ अन्य उद्योगों के भी मजदूर शामिल हुए। इस हड़ताल को आम हड़ताल के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन की सरकार और उद्योगपति हड़ताल से चौंक उठे और इसे तोड़ने की हर संभव कोशिश की गई। हड़ताल के प्रति सरकार के पूर्णता विरोधी रवैये तथा आम जनता को उसके खिलाफ खड़ा करने के लिए किए गए भारी प्रचार के फलस्वरूप 12 मई को आम हड़ताल वापस ले ली गई, लेकिन फिर भी खान मजदूरों की हड़ताल कई महीने चलती रही, जो आखिर में पूरी नाकामयाबी के साथ समाप्त हो गई और श्रमिकों को कम मजदूरी तथा काम के अधिक घंटों की शर्त पर काम करने पर लौटने को मजबूर होना पड़ा। इसके शीघ्र बाद सरकार ने आम हड़तालों को अवैध घोषित कर दिया। 1929 में लेबर पार्टी फिर सत्ता में आई। जब ब्रिटेन आर्थिक संकट की चपेट में आया, तब लेबर प्रधानमंत्री ने वेतन और मजदूरी में कटौती तथा बेरोजगारी, राहत और समाज कल्याण के अन्य कार्यक्रमों में कमी करके इससे मुकाबला करना चाहा। अन्य अधिकांश मंत्रियों ने इसमें उसका साथ देने से इनकार कर दिया, फलतः उसने त्यागपत्र दे दिए। अब एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया, जिसमें ज्यादातर मंत्री कंजर्वेटिव पार्टी के थे। राष्ट्रीय सरकार का समर्थन करने वाले दल 1935 के चुनावों के बाद भी सत्ता में बने रहे, हालांकि उनका बहुमत पहले ही कम हो गया था। इस बीच ब्रिटेन में एक फांसीवादी आंदोलन भी उभरा, जो यहूदियों के खिलाफ हिंसा की हिमायत करता था और जिसने अव्यवस्था तथा उपद्रव फैलाए। 1933 के बाद ब्रिटेन आर्थिक संकट से उबरने लगा। हालांकि बेरोजगारों की संख्या अब भी लगभग 15 लाख थी, उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलनों की बढ़ती हुई शक्ति के कारण ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में और भी कमजोरी आ गई। 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य के गोरे अधिराज्य डोमिनियन अर्थात गोरों से आबाद देशों के ब्रिटिश अधिराज्य लगभग स्वतंत्र हो गए। वे ब्रिटिश राष्ट्रकुल, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सदस्य तो बने रहे, लेकिन अब ब्रिटिश कानून उन पर लागू नहीं रहे और वे अपनी स्वतंत्र नीतियों पर चलने लगे। 1936 में फांसीवादी देशों ने आक्रामक युद्ध आरंभ कर दिए, जिनसे आखिरकार दूसरे विश्व युद्ध की विनाश लीला हुई। अन्य पश्चिमी देशों की तरह ब्रिटिश सरकार ने भी फांसीवाद की तुष्टीकरण की नीति अपनाई। यद्यपि फांसीवाद विरोधी दलों तथा मंडलियों ने इस नीति के खतरनाक परिणामों के प्रति लोगों को सचेत करने की कोशिश की। फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता। फ्रांस में यह अस्थिरता का काल था। फ्रांस के मन में यूरोप की सर्व प्रमुख शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा पल रही थी और उसने भारी शस्त्रीकरण कार्यक्रम आरंभ कर दिया था। जर्मनी के कोयला तथा इस्पात उद्योगों को हथियाने के लिए फ्रांस द्वारा रूर घाटी पर कब्जा कर लिए जाने का उल्लेख हम कर चुके हैं। 1924 के बाद फ्रांस को रूर से वापस चला जाना पड़ा। फ्रांस की सरकार में व्यवसायी वर्गों और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का बोलबाला था और इन दोनों ही की खूब मिलीभगत थी, अतः वहाँ की सरकारें चंद महीनों के अंतराल में ही बनती बिगड़ती रहती थी। आर्थिक संकट के दौरान जब बेरोजगारी की संख्या लगभग 15 लाख पर पहुँच गई और औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों में 30% से अधिक गिरावट आ गई, तो समाजवादी तथा साम्यवादी दलों का जोर बढ़ा। साथ ही एक प्रबल फांसीवादी आंदोलन भी उठ खड़ा हुआ, जिसने सत्ता हथियाने के लिए हिंसा और आतंक का रास्ता अपनाया। 1933 में फ्रांस के एक भारी घोटाले से डवाडोल हो उठा। अलेक्जेंडर अस्ताविस्की नामक एक आस्टोरिये ने लोगों को ठग कर 60 करोड़ फ्रैंक की विशाल संपत्ति अर्जित कर ली। जब इसका भंडाफोड़ हुआ तो पता चला कि इसमें बहुत से राजनीतिज्ञ भी शामिल थे, जिन्हें अस्ताविस्की के भ्रष्ट सौदे में हिस्सा मिला। इन राजनीतिज्ञों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो सरकार में ऊंचे पदों पर आसीन थे। इस घोटाले को बहाना बनाकर फांसीवादियों ने पेरिस पर कब्जा करके सरकार को भंग कर सत्ता हथियाने की कोशिश की, लेकिन साम्यवादियों तथा समाजवादियों ने इस फांसीवादी चाल को विफल करने के लिए श्रमिकों को लामबंद कर दिया। फांसीवादियों से उनकी जमकर भिड़ंत हुई और आखिर उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। 1936 में एक महत्वपूर्ण बात हुई। फांसीवाद के खतरे का मुकाबला करने और खास तौर से श्रमिकों के कल्याण के लिए फिर आवश्यक आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से साम्यवादियों, समाजवादियों तथा आमूल परिवर्तनवादी समाजवादियों, रेडिकल सोशलिस्ट का एक जन मोर्चा गठित किया गया। जन मोर्चे ने चुनावों में भारी विजय पाई और उपर्युक्त समाजवादियों और रेडिकल समाजवादियों ने मिलकर जन मोर्चा सरकार बनाई। यह सरकार 2 साल से कुछ अधिक समय तक चली। अपने शासन के प्रथम वर्ष में जब लियो ब्लूम प्रधानमंत्री था, जन मोर्चा सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। शस्त्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया, मजदूरी तथा वेतन में कटौती समाप्त कर दी गई और श्रमिकों के लिए सप्ताह भर के लिए 40 घंटे का कार्यकाल तय किया गया। फ्रांस की विदेश नीति का उद्देश्य अपनी महाशक्ति बनने की आकांक्षाओं की पूर्ति करना तथा जर्मनी की ओर से किसी भी प्रकार के संभावित अतिक्रमण से अपनी रक्षा की व्यवस्था करना था। उसकी राह पर रोमानिया, यूगोस्लाविया तथा चेकोस्लोवाकिया के बीच एक गठजोड़ कायम हुआ था, जो लघु सुदृढ़ संघ लिटिल अंटांट के नाम से प्रसिद्ध है। फ्रांस ने उन्हें शस्त्र अस्त्र भी दिए। उसे आशा थी कि अगर जर्मनी ने भविष्य में कोई आक्रामक कार्रवाई की तो इन देशों के भय से वह अपनी सारी शक्ति फ्रांस के खिलाफ केंद्रित नहीं कर पाएगा। 1920 वाले दशक में उसने ऐसे सुरक्षा दुर्ग भी बनवाए थे ताकि जर्मनी से लड़ाई होने पर वह फ्रांस में तेजी से आगे ना बढ़ पाए। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी से मिला सबक उसे याद था। यह रक्षा प्रणाली मगिनो रेखा के नाम से विख्यात है। 1935 में उसने सोवियत संघ के साथ एक उभयपक्षी सहायता समझौता किया। सोवियत संघ ने ऐसी ही संधि फ्रांस के मित्र चेकोस्लोवाकिया के साथ की। इस प्रकार के एक तरह से एक त्रिपक्षीय सहायता संधि कायम हो गई। जब जन मोर्चा सरकार बनी तो आशा की जा रही थी कि फ्रांस फांसीवादी अतिक्रमण के खिलाफ तनकर खड़ा होगा, लेकिन 1938 में यह मोर्चा समाप्त हो गया। एडवर्ड दलादिया के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसने ब्रिटिश सरकार की ही तरफ फांसीवादी देशों के तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इस सिलसिले में कुछ ही समय बाद वह अपने मित्र चेकोस्लोवाकिया को भी धोखा देने जा रहा था। पुर्तगाल तथा स्पेन, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, यूगोस्लाविया तथा अन्य देशों में सर्वसत्तावादी और अर्धफांसीवादी सरकारें स्थापित की जा चुकी थी। 1930 वाले दशक के आरंभ में पुर्तगाल में सालाजार ने सेना की मदद से फांसीवादी तानाशाही कायम कर ली थी। जर्मनी और इटली की फांसीवादी सरकारों से वह हमदर्दी रखता था और ब्रिटेन से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए उसने स्पेन में गणतंत्रवादियों को उखाड़ने में योगदान किया। स्वयं को गणतंत्र घोषित करने के बाद स्पेन को अनेक गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1932 में सेना के एक जनरल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, लेकिन उसे दबा दिया गया। इस बीच वहाँ फेलंजे नामक एक फांसीवादी आंदोलन जोर पकड़ने लगा। इस आंदोलन को कैथोलिक चर्च का समर्थन प्राप्त था। स्पेनी फांसीवादियों ने राजनीतिक धाराएं एवं हत्याएं की और सेना में अपने कई समर्थक तैयार कर लिए। फांसीवादियों और राजतंत्र समर्थकों से मुसोलिनी ने मदद का वादा किया। फांसीवाद विरोधी ताकतों को एकजुट करने के लिए एक विद्रोह भी हुआ, लेकिन उसे कुचल दिया गया। अक्टूबर 1935 में खान मजदूरों ने अस्तूरिया में विद्रोह कर दिया और जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको से विद्रोह को दबाने के लिए कहा गया। 1936 में स्पेन में चुनाव हुए। फांसीवाद के खतरे का सामना करने के लिए एक जन मोर्चा खड़ा किया गया। जन मोर्चा चुनावों में विजयी हुआ। इस मोर्चे में सभी समाजवादी दल, साम्यवादी दल, अराजकीय या अराज्यवादी दल तथा वामपक्षी गणतंत्रवादी शामिल थे। जन मोर्चा सरकारों ने हजारों राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया और महत्वपूर्ण आर्थिक तथा राजनीतिक कदम उठाए, लेकिन स्पेनी फांसीवादी फलंजे सेना के जनरलों के साथ जा मिले और स्पेन में घोर गृहयुद्ध आरंभ हो गया। गणतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने में सेना के जनरलों तथा फांसीवादियों को फांसीवादी सरकार की भी मदद मिल रही थी। इस गृहयुद्ध तय इसके परिणामों के बारे में चर्चा आगे की जाएगी। जर्मनी में नाजीवाद की विजय। इस काल की सबसे गंभीर घटना जर्मनी में फांसीवाद की विजय थी। नाजी पार्टी के गठन तथा जिस तरह की साजिश और विद्रोह पूंछ में मुसोलिनी सत्ता में आया था, उनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। युद्धोत्तर काल की मुद्रा अस्फीति तथा 1929 के आर्थिक संकट से उत्पन्न दुख दैन्य का भी जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। फांसीवाद का जर्मनी रूप नाजीवाद सबसे अधिक वावरतापूर्ण। इटली के फांसीवाद की तरह जर्मनी का नाजीवाद भी राजनीतिक लोकतंत्र तथा नागरिक स्वतंत्रता को हिकारत की नज़र से देखता था और युद्ध की महिमा का गुणगान करता था। जिस प्रकार इटली के फांसीवादी रोमन साम्राज्य के वैभव को पुनः प्रतिष्ठित करने का नारा लगाते थे, उसी प्रकार जर्मनी के नाजीवादी प्राचीन ट्यूटोनी साम्राज्य की महानता को फिर से वापस लाना चाहते थे। नाजियों ने गैर यहूदी जर्मनों में सामी सेमेटिक जाति यानी यहूदियों के प्रति विरोध की भावना को उभारा। उनका मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए यहूदी ही जिम्मेदार थे। यही नहीं, जर्मनी के सारे दुखों की जड़ उन्होंने यहूदियों को बताया। उन्होंने जर्मन जाति की शुद्धता और सुनहली आर्य नस्ल का ढिंढोरा पीटा। वे जर्मन नस्ल को दूसरी नस्लों से श्रेष्ठ और इसलिए उन सब पर शासन करने का हकदार मानते थे। उनका ध्येय जर्मन नस्ल के सभी लोगों को एक राज्य में संगठित करने का था, ताकि महान जर्मनी का निर्माण किया जा सके। उन्होंने हमारे लोगों के भरण पोषण के लिए भूमि और प्रदेशों का दावा किया। उनका कहना था कि अतिरिक्त जर्मन आबादी को बसाने के लिए अधिक भूमि और प्रदेश आवश्यक हैं। जर्मनी को सही रास्ते पर लाकर महान बनाने वाले नेता की कल्पना को बढ़ावा दिया गया। नाजी लोग साम्यवाद को अपना सबसे बड़ा शत्रु तथा उसके विनाश को अपना मुख्य कर्तव्य मानते थे। नाजियों ने जर्मन लोगों के युद्ध में पराजित होने के अपमान के भाव का उपयोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किया। उन्होंने लोगों को थोपी गई शांति की उन अन्यायपूर्ण धाराओं की याद दिलाई जिनके तहत जर्मनी को युद्ध अपराध स्वीकार करने और क्षतिपूर्ति पर राजी होना पड़ा। उन्होंने लोगों को इस सब का मार्जन करके राष्ट्रीय स्वाभिमान वापस दिलाने का सब्जबाग सिखाया। इन विचारों को सेना से भी काफी समर्थन मिला, जिसके ज्यादातर अफसर जमींदार वर्ग के थे। ये लोग अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। सबसे बड़ी बात यह हुई कि उन्हें जर्मन उद्योगपतियों का भी पूरा समर्थन मिला, क्योंकि समाजवादी तथा साम्यवादी दलों के प्रबल होने से वे लोग चिंतित हो उठे थे। उनका मानना था कि साम्यवादियों तथा समाजवादियों से उन लोगों की रक्षा तो केवल नाजी ही कर सकते हैं। इतालवी फांसीवादियों की तरह नाजीवादियों ने भी सशस्त्र स्वयंसेवक तैयार किए, जिन्हें SA कहा जाता था। इनको आमतौर पर भूरी शर्टधारी कहा जाता था। ये लोग दिनों दिन बड़े पैमाने पर फांसीवाद विरोधियों तथा यहूदियों के साथ मारपीट और उनकी हत्या करने लगे, उनकी संपत्ति नष्ट करने लगे तथा उन्हें तरह तरह से सार्वजनिक रूप से अपमानित करने लगे। 1930 तक भूरी शर्टधारियों की संख्या लगभग 1 लाख पर पहुंच गई। उनके और साम्यवादियों के बीच अक्सर झड़पें हो जाती थी, लेकिन नाजियों की बढ़ती नृशंसता को रोकने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। फिर भी 1929 के आर्थिक संकट के पूर्व तक नाजियों का जन समर्थन सीमित था। 1928 के चुनावों में उन्होंने राइक्सटाग में केवल 12 सीटें जीती थी। उन्हें समाजवादी लोकतंत्रवादियों के 90 लाख और साम्यवादी पार्टी के 30 लाख वोटों के मुकाबले सिर्फ 8 लाख के आसपास वोट मिले थे। लेकिन 1930 के चुनावों में उनके प्राप्त मतों की संख्या 65 लाख पर पहुंच गई थी, जबकि समाजवादी लोकतंत्रवादी को 65 लाख तथा साम्यवादियों को 45 लाख मत मिले थे। अप्रैल 1932 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में पॉल फॉन हिंडनबर्ग, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना का नेतृत्व किया था और अब 80 की उम्र पार कर चुका था, 1,85,00,000 मत प्राप्त करके विजयी हुआ। उसका समर्थन समाजवादी लोकतंत्रवादियों ने किया था। इस चुनाव में हिटलर को 1,10,00,000 मत मिले थे, जबकि साम्यवादी दल के उम्मीदवार अर्नस्ट थालमान को 37,00,000 मत प्राप्त हुए थे। जुलाई 1932 में रायकस्टाग के लिए जो चुनाव हुए, उसमें नाजी पार्टी सबसे बड़े एकल दल के रूप में उभरी। उसे समाजवादी लोकतंत्रवादियों के 80,00,000 तथा साम्यवादियों के 52,00,000 मतों के मुकाबले 1.37 करोड़ मत प्राप्त हुए। उसी साल नवंबर महीने में दूसरा चुनाव हुआ, जिसमें नाजियों को प्राप्त मतों में कोई 20,00,000 की कमी आ गई, जबकि साम्यवादियों को प्राप्त मत बढ़कर 60,00,000 पर पहुंच गए। लेकिन अब नाजियों को सत्ता में लाने के लिए कुछ दूसरी शक्तियां भी काम कर रही थी। 30 जनवरी 1933 को हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार हिटलर का सत्तासीन होना ना तो चुनावों में उसकी विजय का और ना ही तत्कालीन सरकार के किसी जबरन तख्तापलट का परिणाम था, बल्कि वह पर्दे के पीछे किए गए सौदे का नतीजा था, जिसमें दक्षिण पक्षी राजनीतिज्ञों की मिलीभगत थी। इन दलों तथा जर्मनी के बैंकरों, उद्योगपतियों और बड़े जमींदारों ने हिंडनबर्ग को उसे चांसलर बनाने को राजी कर लिया था। उधर हिटलर ने हिंडनबर्ग को राइकसटाग को भंग करके 5 मार्च 1933 को उसके नए चुनाव कराने के लिए मना किया। चुनाव के 5 दिन पहले 27 फरवरी 1933 को राइकसटाग की इमारत में आग लगा दी गई। खाम तौर पर यह माना जाता था कि यह काम स्वयं नाजियों ने किया, हालांकि यह साबित नहीं हुआ है। आतंक फैलाने और मतदाताओं को भयभीत करने के उद्देश्य से सरकार ने आग लगाने का आरोप साम्यवादियों पर लगाया। आनन फानन में हजारों लोग गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें जॉर्जी दिमित्रो भी शामिल था। दिमित्रो बुल्गारिया के साम्यवादी दल का नेता था और उन दिनों जर्मनी में ही था। इन परिस्थितियों में चुनाव हुए, फिर भी हिटलर बहुमत प्राप्त करने में नाकामयाब रहा। लेकिन चंद महीनों के अंदर हिटलर ने अपनी तानाशाही की जड़ें जमा ली, जिसके लिए उसने समाजवादी लोकतंत्रवादियों, साम्यवादियों, श्रमिक नेताओं तथा अन्य नाजी विरोधियों को आतंकित करने और उनकी हत्या कराने का रास्ता अपनाया। समाजवादी लोकतंत्रवादी दल तथा साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लागू कर दिए गए। 60,000 से ज्यादा लोगों को जेल या यातना शिविरों में भेज दिया गया। 1933 के मध्य तक अन्य सभी दलों को भी भंग कर दिया गया, बल्कि कुछ ने तो स्वतः ही अपने को भंग कर दिया। 1934 में हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति बन बैठा। सत्तारूढ़ होने के चंद महीने के अंदर ही हिटलर ने अपने आतंक तंत्र को चाक चौबंद कर लिया और जर्मन जनता को पूरी तरह से अपने हुक्म का फरमावदार बना लिया। शीघ्र ही पूरा देश एक सशस्त्र शिविर बन गया। सत्तारूढ़ होते ही हिटलर ने गोपनीय रूप से देश को फिर से हथियारबंद करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक ऐसे अनेक कदम उठाए जो वर्साय संधि की शर्तों के खिलाफ थे। अक्टूबर 1933 में जर्मनी राष्ट्र संघ से अलग हो गया, वायुसेना का गठन आरंभ कर दिया गया, जबकि वर्साय संधि में इस पर अस्पष्ट पाबंदी लगा दी गई थी। मार्च 1935 में हिटलर ने घोषणा की कि वर्साय संधि ने जर्मन सैनिक शक्ति पर जो प्रतिबंध लगाए थे, उनसे अब जर्मनी बंधा हुआ नहीं है। उसने थल सेना तथा वायु सेना के पुनर्गठन के साथ ही एक नौसेना का निर्माण भी आरंभ कर दिया। जुलाई 1936 में विसैन्यीकृत राइनलैंड पर जर्मन सेना काबिज हो गई। वर्साय संधि की शर्तों का पूर्ण उल्लंघन करने वाले इन कदमों का किसी भी पश्चिमी ताकत ने कोई विरोध नहीं किया। 1936 तक जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति को परवान चढ़ा चुका था और अब उन आक्रामक कार्रवाइयों के लिए रंगमंच तैयार हो चुका था जो दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने वाली थी। राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन के सदस्यों में सभी महाद्वीपों के देश शामिल थे, लेकिन इसमें बोलबाला यूरोप के बड़ी शक्तियों का था और इसके भाग्य का निपटारा भी वही करने वाली थी। इसकी स्थापना के समय 44 सदस्य थे, रूस और जर्मनी को छोड़कर, जिन्हें कि इरादतन बाहर रखा गया था। यूरोप के बहुत से देश, लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश, एशिया से ईरान, जापान, चीन, थाईलैंड और भारत, जो कि अब तक एक उपनिवेश ही था, अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीकी संघ, इथियोपिया और लाइबेरिया तथा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसके सदस्य थे। संघ की एक महासभा, एक परिषद तथा एक सचिवालय था। महासभा में सभी देशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था और हर देश को एक मत देने का अधिकार था। आरंभ में परिषद के 9 सदस्य थे, जिनमें से ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 देश अस्थायी सदस्य होने थे और शेष 4 अस्थायी। संघ में संयुक्त राज्य शामिल नहीं हुआ और जब 1926 में जर्मनी को दाखिल किया गया तो 5वां अस्थायी सदस्य इसी को बनाया गया। जर्मनी को लोकार्नो, स्विट्जरलैंड में 1925 में आयोजित बैठक में दाखिला दिया गया था। इस बैठक में जर्मनी सहित 7 यूरोपीय देश शामिल हुए थे, लेकिन सोवियत संघ को बाहर ही रखा गया। इस बैठक में एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत जर्मनी तथा फ्रांस और जर्मनी तथा बेल्जियम के बीच की मौजूदा सीमाओं को अस्थायी माना गया। इन तीनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई अतिक्रमण न करने का वचन दिया। 1928 तक यूरोप के सभी देश राष्ट्र संघ के सदस्य बन चुके थे, लेकिन सोवियत संघ को 1934 में दाखिला दिया गया। तब तक जर्मनी और जापान संघ का त्याग कर चुके थे। संघ में यूरोपीय देशों का, खास तौर से ब्रिटेन और फ्रांस का बोलबाला था। संघ छोटे राज्यों के मामूली विवादों को तो हल कर पाया, लेकिन जिस किसी विवाद से कोई बड़ी ताकत उलझी होती थी, उसमें अतिक्रमण को रोकने, सदस्य देशों की स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करने और शांति की हिफाजत करने में वह सर्वथा असमर्थ सिद्ध हुआ। इस मामले में संघ की ओर असफलता, फांसीवादी एवं सैन्यवादी शक्तियों के प्रति अपनाई गई तुष्टिकरण की नीति पर प्रतिबंध का था। संघ के प्रतिज्ञा पत्र में अतिक्रमण को रोकने के कारगर उपायों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इन उपायों का सहारा नहीं लिया गया। जापान ने मंचूरिया पर कब्जा करके वहां मंचुकू नाम की एक कठपुतली सरकार स्थापित कर दी थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह नग्न अतिक्रमण की पहली बड़ी कार्रवाई थी। लीग ने मंचुकू सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन जापान से उसे यह कहते नहीं बना कि वह 1931 से पूर्व की व्यवस्था पुनः स्थापित कर दे और अपना अतिक्रमण वापस ले। कुछ साल बाद ही जापान ने चीन पर भारी हमले शुरू कर दिए। अक्टूबर 1935 में इटली ने 6 लाख की विशाल सेना लेकर इथियोपिया पर आक्रमण किया। नवंबर में संघ ने इटली के खिलाफ सीमित आर्थिक प्रतिबंध की घोषणा की, लेकिन मई 1936 में इथियोपिया के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद इटली ने संघ के इस सदस्य राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जुलाई 1936 में सीमित आर्थिक प्रतिबंध भी वापस ले लिए गए। संघ पर दबदबा रखने वाले देशों ने अतिक्रमण का प्रतिरोध करने की इच्छा के सर्वथा अभाव का परिचय दिया। संयुक्त राज्य ने भी, जो संघ का सदस्य नहीं था, यह नीति अपनाई। सोवियत संघ ऐसा एकमात्र देश था जिसने अतिक्रमण को रोकने के लिए शक्ति प्रयोग और ब्रिटेन तथा फ्रांस के साथ फांसीवादी विरोधी मोर्चा कायम करने की हिमायत की। विश्व भर के फांसीवादी विरोधी लोकमत ने सोवियत संघ की स्थिति का समर्थन किया। पश्चिमी देशों को फांसीवाद तथा अतिक्रमण के तुष्टिकरण की नीति का आधार यह विश्वास था कि अंत में फांसीवादी देशों के अतिक्रमण का रुख सोवियत संघ की ओर मुड़ेगा। पिछले 3 वर्षों से दुनिया धीरे धीरे एक और विश्व युद्ध की ओर बढ़ती जा रही थी। अक्टूबर 1936 में इटली और जर्मनी ने एक राजनीतिक सहयोग पर समझौता किया। यह समझौता रोम बर्लिन धुरी रोम बर्लिन एक्सिस के नाम से प्रसिद्ध है। नवंबर 1936 में जर्मनी और जापान के बीच एक कोमिंटर्न विरोधी समझौता हुआ था। अगले नवंबर महीने में इटली भी उसमें शामिल हो गया। 1937 में इटली राष्ट्रसंघ से बाहर आ गया। रोम बर्लिन धुरी कायम होने के पहले से ही इटली और जर्मनी स्पेन में एक फांसीवादी तानाशाही को प्रतिष्ठित करने के लिए परस्पर सहयोग करने लगे थे। अतिक्रमण और तुष्टिकरण 1936 से 37 में जर्मनी इटली और जापान इन तीन शक्तियों का एक आक्रामक गुट उभरा। प्रमुख पश्चिमी ताकतों खासकर ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टिकरण की नीति से इस गुट को बढ़ावा मिला। इन देशों की विभिन्न आक्रामक कार्रवाइयों के प्रति संयुक्त राज्य भी उदासीन रहा। तुष्टिकरण की नीति चलती रही जिससे हिटलर को विश्वास हो गया कि पोलैंड पर उसके आक्रमण से भी ब्रिटेन और फ्रांस की निष्क्रियता भंग नहीं होगी। हालांकि उसका यह अंदाजा गलत निकला और उसकी इसी कार्रवाई को लेकर 1939 में युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध का बुनियादी कारण इन तीन देशों की समाजवादी महत्वाकांक्षाएं थी। जर्मनी यूरोप को जीतकर दुनिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता था। इटली बालकन देशों अरब देशों तथा अफ्रीका के एक बड़े हिस्से को हथियाना चाहता था। जापान एशिया और प्रशांत क्षेत्र का स्वामी बनने के अपने सपने देख रहा था। स्पेन का गृह युद्ध इटली और जर्मनी के संयुक्त अतिक्रमण का यूरोप में पहला शिकार स्पेन हुआ। फरवरी 1936 में चुनाव में जन मोर्चे की जीत हुई। नई सरकार ने सुधार के कदम उठाने शुरू कर दिए। उसने नागरिक स्वतंत्रताओं को पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। बड़ी बड़ी जमींदारियों को तोड़कर किसानों की जमीन की मांग पूरी करने की कोशिश की और खान मजदूरों तथा अन्य औद्योगिक श्रमिकों की अवस्था में सुधार किया। शैक्षिक विकास का भी एक कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस सबसे जल भुनकर फलंजो और स्पेन को पिछड़ा रखने के लिए जिम्मेदार हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य दक्षिण पक्षी दलों और गुटों ने अपने सहयोगी सैनिक जनरलों से मिलकर जन मोर्चा सरकार को हटाकर फांसीवादी शासन स्थापित करने की योजना बनाई। जुलाई 1936 में फांसीवादियों ने देश के अंदर और स्पेनी उपनिवेशों में भी सैनिक विद्रोही कारवां कर दिए। विद्रोहियों का प्रमुख नेता जनरल फ्रैंको था। वह स्पेन के मोरक्को स्थित उपनिवेशों से अपनी सेना को लेकर विद्रोहियों का साथ देने स्पेन पहुंच गया। 3 साल तक भीषण गृह युद्ध चलता रहा। इस बीच गणतंत्र विरोधी फांसीवादी शक्तियों और उनके सहयोगियों ने, जो स्वयं को राष्ट्रवादी कहते थे, गणतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करने के लिए इटली और जर्मनी की सहायता प्राप्त कर ली थी। सच तो यह है कि स्पेनी गृह युद्ध ने यूरोप के दो फांसीवादी देशों को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने स्पेनी फांसीवादियों की सहायता से भारी मात्रा में शस्त्रास्त्र, गोला बारूद और विमान स्पेन में झोंक दिए और अपनी फौजों को भी वहां उतार दी। विद्रोहियों ने विदेशी सहायता से देश के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और उन सभी देशों के खिलाफ जिन पर कि किसानों तथा गणतंत्रवादियों का समर्थन करने का संदेह था, आतंक का नग्न कोहराम मचा दिया। ऐसे नाजुक समय में भी इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका हस्तक्षेप की नीति पर कायम रहे। इस नीति का मतलब यह था कि गणतंत्रवादियों को तो कोई मदद नहीं मिल सकती थी और उधर फ्रांको को जर्मनी तथा इटली की सैनिक सहायता निर्बाध मिलती रही। गणतंत्रवादियों के समर्थन में आगे आने वाला एकमात्र देश सोवियत संघ था। गणतंत्रवादियों ने नागरिकों की सहायता से अपनी प्रतिरक्षा का संगठन किया। नागरिकों के सहयोग से तैयार की गई स्वयं सेवक सेना के बल पर उन्होंने कई भयंकर लड़ाइयों में मोर्चा लिया। नवंबर 1936 में उन्होंने राजधानी मैड्रिड की रक्षा अपनी जान की बाजी लगाकर की और फ्रेंको की सेना को उस पर कब्जा नहीं करने दिया। स्पेनी गृहयुद्ध ने दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया। 50 से ज्यादा देशों के फांसीवादी विरोधी लोगों ने स्पेनी गणतंत्र की रक्षा के निमित्त लड़ने के लिए अपने नाम स्वयं सेवकों के रूप में दर्ज कराए। 40,000 स्वयं सेवकों की एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रिगेड तैयार कर ली गई। स्पेन में लड़ते हुए उनमें से हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनमें जर्मन और इतालवी फांसीवाद विरोधी लोग भी शामिल थे। जर्मन स्वयं सेवकों की बटालियन का नाम थालमान बटालियन रखा गया। थालमान जर्मन साम्यवादी नेता था जिसे नाजियों ने यातना शिविर में भेज दिया था और बाद में मार डाला था। अमेरिकी बटालियन का नाम संयुक्त राज्य में गुलामी को समाप्त करने वाले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम पर रखा गया था। स्पेन के गणतंत्र के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दुनिया में फांसीवाद के विरुद्ध बढ़ती चिंता का द्योतक था। स्पेन के गृहयुद्ध को मात्र एक स्पेनी मामले के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसे फांसीवाद तथा आक्रामक प्रवृत्तियों के खतरे से ग्रस्त पूरी दुनिया का मामला माना गया। स्पेनी गणतंत्रवादियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सहानुभूति का आश्वासन देने जवाहरलाल नेहरू स्पेन गए थे। विश्व के विभिन्न भागों के बहुत से लेखक, कवि और कलाकार स्पेनी गृहयुद्ध में लड़े और उन्होंने विश्व लोकमत को गणतंत्र के समर्थन में लामबंद किया। 20वीं सदी के सबसे बड़े चित्रकार पाब्लो पिकासो को गुएर्निका का चित्र बहुत महत्वपूर्ण कलाकृति माना जाता है। गुएर्निका स्पेन का एक शहर था जिसे फांसीवादियों के विमानों ने बमबारी करके तहस नहस कर दिया था। यह चित्र जिसे उस शहर का नाम दिया गया था, फांसीवादी पाशविकता के विरुद्ध आक्रोश की उद्दाम अभिव्यक्ति था। फरवरी 1939 तक स्पेन का अधिकतर भाग फांसीवादियों के हाथों में आ चुका था और ब्रिटेन तथा फ्रांस ने और कुछ बाद में संयुक्त राज्य ने भी फ्रेंको की सरकार को मान्यता दे दी। मैड्रिड नगर मार्च के अंत तक प्रतिरोध करता रहा, लेकिन इस नगर के पतन के साथ ही स्पेन पर फांसीवादी सत्ता पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गई। स्पेनी गृहयुद्ध को अक्सर द्वितीय विश्व युद्ध का सजा युक्त अभ्यास ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। फांसीवादी देशों ने स्पेन की युद्ध भूमि में अपने नए हथियारों को आजमाया था। चीन पर जापानी आक्रमण, मंचूरिया में अपनी विजय को पुख्ता करके जुलाई 1937 में जापान ने चीन पर खड़े पैमाने पर हमला बोल दिया। कुछ महीनों में बीजिंग, नानजिंग और शंघाई नगर सहित उत्तरी चीन के बहुत बड़े हिस्से उसके कब्जे में चले गए। जिन चीनी नगरों का कोई सामरिक महत्व नहीं था, उन पर भी जापानियों ने बमबारी की और चीनी आबादी के साथ बहुत वारवरता पूर्वक व्यवहार किया। 1938 में उन्होंने पूर्व एशिया की नई व्यवस्था की घोषणा की। जिस व्यवस्था को उन्होंने यह संज्ञा दी थी, उसमें उनकी तजवीज जापान, चीन और मंचूरिया का एक राजनीतिक संघ बनाने की थी। इस समय तक चीन ने एकजुट होकर जापान का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया था। राष्ट्रसंघ ने जापानी अतिक्रमण की निंदा तो की, लेकिन उसे समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया। ऑस्ट्रिया पर कब्जा, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ हुई शांति संधियों के अनुसार इन दोनों देशों के किसी प्रकार का राजनीतिक संघ बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन हिटलर के उदय के साथ यह खतरा पैदा हो गया कि जर्मनी ऑस्ट्रिया को अपने राज्य में मिला लेगा। जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया का संघ बनाने के लक्ष्य को लेकर ऑस्ट्रिया में एक नाजी आंदोलन भी सिर उठाने लगा था। इस आंदोलन को आंसलस जर्मनी के साथ संयोजन की संज्ञा दी गई। 1930 के दशक के आरंभ में एंगेलबर्ट डॉल्फस ने ऑस्ट्रिया में अपनी तानाशाही स्थापित कर ली थी। उसने ऑस्ट्रिया के समाजवादी तथा साम्यवादी दलों को दबा दिया, लेकिन वह जर्मनी के साथ संघ बनाने के भी खिलाफ था। उसे मुसोलिनी का समर्थन मिला रहा था। उसने तब तक जर्मनी से गठबंधन नहीं किया था और इटली को महाशक्ति बनाने की अपनी स्वतंत्र महत्वाकांक्षाओं को लेकर चल रहा था। 1934 में डॉल्फस की हत्या कर दी गई और ऑस्ट्रिया के नाजियों ने एक विप्लव द्वारा सत्ता का अधिकार करने की कोशिश की। नाजियों तथा साम्यवादियों एवं अन्य नाजी विरोधियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। विप्लव का प्रयत्न विफल हो गया। मुसोलिनी ने भी अपनी सेना को इटली की ऑस्ट्रियाई सीमा पर लगा दिया। हिटलर अब तक जर्मनी की शक्ति के संबंध में आश्वस्त नहीं हो पाया था, सो उसने भी ऑस्ट्रिया के मामले में दखल न देने का फैसला किया। लेकिन 1938 में स्थिति बदल चुकी थी। इटली की इथियोपिया विजय के बाद तथा स्पेनी गृहयुद्ध के दौरान बर्लिन, रोम, धूरी और कोमिंटर्न विरोधी समझौते की बदौलत जर्मनी और इटली के एक दूसरे के निकट आ चुके थे। मुसोलिनी से साठगांठ करके हिटलर ने 11 मार्च 1938 को अपनी सेना को ऑस्ट्रिया में प्रवेश करा दिया और ऑस्ट्रियाई नाजियों ने देश में सत्ता हथिया ली। हिटलर ने घोषणा की कि जर्मन सेना को विपत्ति में पड़े उन जर्मन भाइयों की मदद के लिए भेजा गया जो ऑस्ट्रियाई सरकार के कुशासन में दुख भोग रहे थे। इस तरह पश्चिमी देशों की ओर से बिना किसी प्रतिरोध प्रतिवाद के अंसलस का लक्ष्य प्राप्त हो गया। यद्यपि यह कदम शांति संधियों का सरासर उल्लंघन था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन का विचार था कि जर्मनी के पूर्वाभिमुख विस्तार तथा उसकी उचित प्रादेशिक मांगों की पूर्ति से पश्चिमी यूरोप सुरक्षित रहेगा और उससे शांति कायम रखने में सहायता मिलेगी। म्यूनिक समझौता तुष्टिकरण की नीति अपनी पराकाष्ठा पर तब पहुंची जब चेकोस्लोवाकिया के पश्चिमी मित्र देशों ने उससे निर्लज्जता के साथ विश्वासघात करते हुए उसे जर्मन भेड़िए के हाथों सौंप दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद चेकोस्लोवाकिया का उदय एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ था। वह यूरोप के उन चंद राज्यों में था जिन्होंने अपनी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था कायम रखी थी, जबकि पूर्वी, दक्षिणी तथा मध्य यूरोप के ज्यादातर देश सर्वसत्तावादी शासन की गिरफ्त में आ गए थे। चेकोस्लोवाकिया पूर्वी यूरोप का सबसे अधिक औद्योगिकृत राज्य भी था। चेकोस्लोवाकिया के सुडेटन नामक एक हिस्से में अच्छी खासी जर्मन आबादी थी। सुडेटनलैंड इस देश के कुछ एक अति महत्वपूर्ण उद्योगों का भी केंद्र था। ऑस्ट्रिया को हड़प लेने के बाद हिटलर के आक्रामक मंसूबों का लक्ष्य चेकोस्लोवाकिया था। जर्मनी ने आरंभ में यह मांग की कि सुडेटनलैंड उसे सौंप दिए जाए। फ्रांस 1920 के दशक से ही चेकोस्लोवाकिया से मित्रता की संधि से बंधा हुआ था। चेकोस्लोवाकिया ने जर्मनी की मांग ठुकरा दी। इसमें उसे सोवियत संघ का समर्थन मिला। 1935 में सोवियत संघ ने भी चेकोस्लोवाकिया के साथ मित्रता की संधि की थी। उसने चेकोस्लोवाकिया से वादा किया कि अगर वह जर्मन अतिक्रमण का प्रतिरोध करने का फैसला करे तो वह तुरंत उसकी मदद करने के लिए आ जाएगा। लेकिन 29 और 30 सितंबर 1938 को म्यूनिख में एक बैठक हुई जिसमें हिटलर, मुसोलिनी, चैम्बरलेन और डलादियर शामिल हुए। बैठक में ना तो चेकोस्लोवाकिया को बुलाया गया जिसकी किस्मत का फैसला किया जा रहा था, और ना ही सोवियत संघ को आमंत्रित किया गया जो चेकोस्लोवाकिया का मित्र था। इस बैठक में चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी की दया पर छोड़ देने का फैसला किया गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया को सुडेटनलैंड जर्मनी को सौंप देने पर विवश कर दिया। उसने सोवियत सहायता न लेने का फैसला किया और आत्मसमर्पण कर दिया। सुडेटनलैंड पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया और चेकोस्लोवाकिया के कुछ प्रदेश हंगरी तथा पोलैंड को भी दे दिए गए। मार्च 1939 में जर्मनी अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा और उसने चेकोस्लोवाकिया के बचे खुचे हिस्सों पर भी अधिकार कर लिया। लगभग इसी समय लिथुआनिया को पूर्वी प्रशा की सीमा से लगा मेमल नामक शहर जर्मनी के हवाले कर देना पड़ा। उन दिनों जवाहरलाल नेहरू यूरोप में थे। वे चेकोस्लोवाकिया भी गए, जहां उन्होंने अपने मित्र को कैसे धोखा देते हैं इसका कठिन और उलझा हुआ खेल काफी नजदीक से देखा। म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर होने से सप्ताह भर पहले लिखे ऑन द ब्रिंक कगार पर शीर्षक से अपने एक लेख में उन्होंने कहा कि अगर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस एक साथ मिलकर शांति के पक्ष में खड़े हो जाते तो नाजी अतिक्रमण को रोका जा सकता था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस को हिटलर का साथ ज्यादा पसंद था। पोलैंड का प्रश्न और सोवियत संघ के साथ वार्ता। जर्मनी की ओर से अगला खतरा पोलैंड पर आया। जर्मनी ने वर्साय संधि में पोलैंड को दिया गया गलियारा और पूर्वी प्रशा का शेष जर्मनी से अलग कर देने वाला स्वतंत्र नगर डांजिंग वापस मांगा। ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों ने घोषणा की कि पोलैंड की स्वतंत्रता को साफ तौर पर खतरे में डालने वाली कोई कार्रवाई की गई तो वे पोलैंड को अपनी सामर्थ्य भर पूरी सहायता देगी। मालूम होता है अतीत के अनुभवों के आधार पर जर्मनी ने सहायता के इन वादों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फांसीवादी अतिक्रमण आरंभ होने के बाद से यह पहला अवसर था जब ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ संधि करने के लिए रूस के साथ वार्ता शुरू की। ब्रिटेन और फ्रांस में से किसी की भी सीमा पोलैंड से नहीं लगती थी और पोलैंड पर जर्मन हमला होने पर उनमें से कोई भी पोलैंड की सीधी मदद के लिए आगे नहीं आ सकता था, लेकिन सोवियत संघ के साथ पोलैंड की सीमा दूर दूर तक मिलती थी और इस हालत में ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ का गठबंधन ही पोलैंड के खिलाफ जर्मन अतिक्रमण का अंकुश लगा सकता था, लेकिन लगातार सोवियत विरोधी नीतियों पर चलने वाले पोलैंड को यह गवारा नहीं था कि सोवियत सेना उसकी भूमि में प्रवेश करे, चाहे उसके अस्तित्व पर ही क्यों न आन आ पड़े। इससे मॉस्को स्थित फ्रांसीसी, ब्रिटिश तथा सोवियत सैनिक मिशनों के बीच 12 से 21 अगस्त 1939 तक चलने वाले वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया। अंत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिक मिशनों ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकारों ने उन्हें सोवियत संघ के साथ कोई कारगर संधि करने का अधिकार नहीं दिया है और इसी के साथ वार्ता भंग हो गई। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी और सोवियत संघ ने एक अनाक्रमण समझौते नॉन एग्रेशन पैक्ट पर दस्तखत किए। 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। 3 सितंबर को ब्रिटेन और उसके बाद फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी।